राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 अप्रैल 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। आज सुबह जैसे कहा कि इस संसार में संयोग और वियोग होता है, मात्रा स्पर्शास्त कौन थी शीतोष्ण सुख दुख दुखदा आगमापायनो अनित्यास्ता स्थिति स्वभारत। यह विषयेन्द्र संबंध है ना, संसार का जो संयोग है, ये संयोग ही सुख दुख का मात्रा स्पर्शास्त कौन थे शीतोष्ण सुख दुख का। मानो शीत का तात्पर्य अनुकूलता, उष्ण का मतलब प्रतिकूलता से, अनुकूलता और प्रतिकूलता का ये हमारे संयोग होते हैं। तो शीतोष्ण सुख दुख कदा का मन अनुकूलता के चलते ये सुख देते हैं, प्रतिकूलता से ये दुख देते हैं। तो ये वास्तव में दुख नहीं देते हैं, हम दुख मान लेते हैं। किसी को कोई बात अनुकूल लगती है वही दूसरे को प्रतिकूल मालूम देती है, किसी को प्रतिकूल मालूम देती है वही किसी को अनुकूल मालूम देती है। तो शीतोष्ण सुख दुख होता अपने स्वभावे और न स्वभावे इस बात को लेकर सुख दुख जाने वाले हैं। परंतु आगमा पाए ना अनित्य, आड़े जाने वाले है अनित्य है। स्थितिक्षस्व भारत, भगवान कहते हैं उनको तुम सहन हो। सहन का तात्पर्य न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्त अप्रियम। प्रिय और अप्रिय है ये शीतोष्ण सुख दुख का। प्रिय में सुख देने वाले, अप्रिय जिनको हम मान लेते हैं वो दुख देने वाले हैं। तो सुख दुख देने वाले हैं ये, उसी से ही हम सुखी दुखी हो जाते हैं। तो ये आगमा पाई है अनित्य है, अनुकूलता भी आने जाने वाली है, प्रतिकूलता भी आने जाने वाली है, और ये अनित्य है हरदम नहीं रहती। स्थिति उनको तुम सह लो, सहन करो। सहन करने से क्या होगा, यंग ही न व्यसंती पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जिसके सुख दुख सम है, ऐसा जिसने कर लिया है, समता रह जाए, न प्रतिषेध प्रेम प्राप्त प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्ष न हो और अप्रिय प्राप्य न उजेत, अप्रिय प्राप्ति से उद्विग्न न हो। तो प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति क्या है? ये अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जिसको हम अनुकूल तो मानते हैं वो अच्छा लगता है, और प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है बुरी लगती है। तो ये आगमा पाई अनित्य है, उनको सहलो का मतलब तुम न अनुकूलता में प्रहर्षित हो न प्रतिकूलता में उद्विघ्न हो। तो दुखेशु अनुद्विघ्न मना, सुखेशु विघतस्पृह। दुखों के प्राप्त होने पर उद्वेग न हो, हलचल न हो, ऐसे बनना है। सुखेशु विघतस्पृह, और सुख के विषय में स्पृहा न हो, भीतर में परवाह कि सुख आना चाहिए, अनुकूलता रहनी चाहिए, ऐसे हर्षित न हो। तो ऐसा जो सब होता है, सब दुख धीर वो पंडित है, उसकी बुद्धि ठिकाने है। तो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है। अमृतत्वाय मान अमर होने के लिए, अमरत्व की प्राप्ति के लिए कल्पते मानो समर्थ होता है। कृपु सामर्थ्य रातों से कालपति बन रहा है, कृपा रोला लग हो जाता है। तो वो मुक्ति का पात्र होता है। ध्यान दें, अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर हमारे थपेड़ा लगता है, हम सुखी दुखी होते हैं। तो यहां भी सुखी दुखी होते हैं, और अगारे भी बंधन होता है। किसी जोने में जाओ, नरकों में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, वहां भी अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी। मन सुहाई बात होगी, कोई मन में बेसुहाई बात होगी, तो ये तुम्हारी होगा। तितिक्षस्व का क्या है? सम दुख सुखम धीरा, अनुकूलता प्रतिकूलता में वृत्ति सम रहे। दोनों में सब कैसे रहे भाई? तो अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है और जाती हुई बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है और जाती हुई अच्छी लगती है। ख्याल किया आपने? सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ना, तो सुखदायी परिस्थिति आती हुई अच्छी लगती है और अनुकूल परिस्थिति चली जाए तो बुरी लगती है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आती हुई बुरी लगती है, और वो चली जाती है तो अच्छी लगती है। तो इनमें फर्क क्या हुआ? शत्रुदत्त संयोग दियोगे मित्र मप्य हो, शत्रु मिलने पर दुख देता है और मित्र वियोग होने पर दुख देता है। उभय और दुखदायित्व, दोनों दुख देने वाले हैं। को भेदा शत्रु मित्र, जो शत्रु मित्र भेद क्या हुआ? तो हम भेद कर देते हैं, ये ही बंधन है, ये बंधन है, और इससे रहित हो जाए ये मुक्ति है। अब ख्याल करें, हमें बहुत वर्षों तक पता नहीं लगा कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। तो सीधी बात है, अनुकूलता प्रतिकूलता ये बंधन है। इनमें जो राजी नाराज होते ये बंधन होता है और इसमें हम खुश रहते हैं प्रसन्न रहते हैं दोनों को समान समझते ये मुक्ति है। अर्जुन ने कहा कि महाराज कुटुंबियों के मारने से पाप लगेगा मानो युद्ध करने से पाप होगा एकान आवत्ताय न अथवा पापम अस्मान पापम एवाश्रेत हम लोगों को तो पाप ही लगेगा और युद्ध न करके हम निर्वाह कर लेंगे जो क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है वो भिक्षा खाना भेक्षवपी ये लोक में भिक्षा खाना भी अच्छा है गुरुजनों के मारने की अपेक्षा और गुरुजनों के मारने से जो धन मिलेगा राज्य वो कैसा होगा उसके लिए बताया कि वो होगा रुधिर पर धान भोगा ये हो तो मंजी लोही से लथपथ गुरुजनों के खून से जो परिणाम मिला राज्य तो वो राज्य गुरुजनों के खून से सना हुआ है तो भोग है वो भी कैसे मिलेंगे गुरुजनों के खून से लथपथ इससे तो भिक्षा भी शुद्ध है श्रेयो भोगतम भैक्षम भैक्षम भी श्रेया भिक्षा का अन्न खाना भी इससे अपेक्षा श्रेष्ठ है तो पाप करने से युद्ध करने से पाप करने से युद्ध करने से पाप लगेगा भगवान का शासन है तुम एवं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ये धर्म में युद्ध आया है इस संग्राम को न करेगा तो तेरे को पाप लगेगा तथा स्वधर्म की हित्वा पापम एवाप्स्यसि पाप लगेगा। तो अर्जुन की दृष्टि से युद्ध करने से पाप लगेगा और भगवान की दृष्टि से युद्ध न करने से पाप लगेगा तुम्हारे पाप से बचना का कोई उपाय है तो भगवान ने कहा सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व देव पाप मावश्य सुख दुख तो क्या हुआ जय और पराजय से लाभ और हानि होगी जैसे लाभ होगा पराजय से हानि होगी जैसे सुख होगा पराजय से जो हानि होती वो दुख होगा तो इनको तुम सम करो सम क्या करे दुखे स्वर्णा सुखे सुस्मी न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नो दिल प्राप्य सा प्रियम इसमें राजी नाराज न होना सुखी दुखी न होना तो मतलब तितिक्षा स्व वही बात आ गई वह तितिक्षा इस तितिक्षा से मुक्ति का पात्र होता है अर्थात ये जो बंधन है ये नहीं होगा तो बंधन करने वाली चीज क्या है हम जो राजी नाराज होते हैं ये ही बंधन है और सब दुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय करते सुख दुख समान जिसके हो गया पंडित के वो मुक्ति का पात्र होता है। अगर ही कहते हैं भगवान चौदहवें अध्याय में सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख में सम हो जाता है वो स्वस्थ होता है अपना स्वास्थ्य कैसा भी तुम्हारी प्रकृति कैसी है सुखी होना बीमारी और तो नहीं है तो स्वस्थ नाम किसका है बीमार नाम किसका है जो राजी नाराज होते वो बीमार है बीमार आदमी चलने फिरने में असमर्थ होता है वो ठीक चल नहीं सकता तो सुखी दुखी होने वाला संसार में सुख से रह नहीं सकता, बीमार है, बीमारी है ये, सुख ही होना दुख ही होना। तो ये बीमारी न हो तो क्या होता है, कभी समझो कि सुख स्वस्थ होता है, स्वस्थ क्या होता है, समझो कि सुख सुख दुख में समान होता है, वो स्वस्थ होता है। और सुख दुख में राजी नाराजी तो वो पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, ये प्रकृतिस्थ अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, प्रकृति में स्थित होता है तो वो सुखी दुखी होता है। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगोष्य सदस्योनि जन्मसु, गुणों का संग हो जाता है तो नीच ऊंच योनि में जन्म लेता है, तो ऊंच नीच योनि में जन्म का कारण हुआ सुखी दुखी होना। ये सुखी दुखी होना है ये बंधन है। बहुत सी ऐसी बातें थी और अब भी हो सकती है, अभी निद्र नहीं आई है, ऐसी है बातें जिनको हम ठीक तरह से जानते नहीं। आपकी आप जाने, मेरे मन में तो बात आई है ऐसी कि हम क्या है क्या नहीं, क्या करने से बंधन होता है, क्या करने से मुक्ति होती है, कोई बताने वाला आगे मिल जाता क्यों करने, ऐसे मन में आती थी। वैसे कर नहीं सके, मन में आती थी। आप लोगों को याद ही होगा कि इसका कोई पता बता दे, तो पता है ये असली अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो सुखी दुखी होना है ये बंधन है। ये बंधन कहां तक है, आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ति न, ब्रह्म लोक से जाकर के पूरा लौट कर आते हैं तो ब्रह्मलोक सुख भोगा फिर आ जाते दुख भोगते हैं, तो ब्रह्मलोक से फायदा क्या हुआ, सुखी दुखी वैसे ही होते हैं, वहां भी सुखी होते अनुकूलता मिल जाती है, उधर पुनरावर्ति यहां होते यहां पर फिर दुख मिलता है सुख मिलता है। तो बड़ी बड़ी तपस्या करी, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करी, ऊंचा से ऊंचा लोग ब्रह्म लोग मारा गया है, तो वहां से भी लौट कर आना पड़ता है, तो सुखी दुखी होना पड़ता है, तो बंधन होता है, तो क्या फायदा हुआ, वहां जाकर कोई खोटी हो जानी। पहले अगर काम ठीक कर देते तो क्यों जाना आना पड़ता। देवी संपद हिमोक्षाय निबंधाया सूर्य बता, देवी संपद क्या, क्षमता, जितने जिसके जीवन में क्षमता आ गई उतनी वो दैवी संपदा आ गई, और जितनी जिसके मन में विषमता है उतनी आंसू संपत्ति है। दैवी संपत्ति या देव शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है, देव नाम है परमात्मा का, तो परमात्मा की प्राप्ति करने कराने के जितने गुण है वो देवी संपद है, और परमात्मा से विरुद्ध धर्म मन में ले जाने वाले गुण है वो आसुर संपद है। आसुर नाम अशु नाम प्राणों का है, उसमें ही रमण करे, हम जीते रहे, हम जीते, ये इच्छा ही वास्तव में सुख दुख देने वाली है, वो आसुर संपत्ति है। तो आसुर संपत्ति बंधन के लिए होती है, तो लोगों में ब्रह्म लोग तक भी जाने वाले बंधन में आते हैं, बंधन से रहित नहीं होते, और पुनर्जन्म होता है उसको दुखालय कहा है, सुख दुख दोनों नहीं गए, दुखालय और दुखालय है, जैसे औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, औषधालय होता है, तो उसमें वही चीज होती है, भोजनालय में भोजन है, वस्त्रालय में वस्त्र, पुस्तकालय में पुस्तक, ऐसे विद्यालय में विद्या पढ़ते, ऐसे भगवान कहते पुनर्जन्म दुखालय है, आप हम सत्संग करने वाले हैं, हम एक पाठशाला करें। इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये दुखालय है मनुष्य जन्म, इसमें सुख नहीं ढूंढना है, इसमें तो परमात्मा को प्राप्त करना है, यही तनु कर फल विषय अनुवाही। संसार के पदार्थ संग्रह करना और उनसे सुख भोगना, इसके लिए ये नहीं है। तो ये समबुद्धि होनी चाहिए, जिसको गीता ने योग कहा है, समतम योग उचित, और गीता ने कहा दुख संयोग वियोगम योग संहिता, दुखों के संयोग से ही वियोग हो जाए, दुख हो गई नहीं, उसका नाम योग है। तो योग है वो वास्तव में मुक्ति देने वाला, सभी सर्व दुख से अतीत हो गए, बंधन छूट गया, कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, गुणों से असंगता हो गई, दुख है सोने दुगना सुख है वीतराग भय क्रोधा विगतेच्छा भय क्रोध भय क्रोध विगतेच्छा, ये मिट गए हैं तो वो मुक्त हो जाता है। तो गुणों का संग क्या है कि अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता में नाराज होना, ये हुआ गुणों का संग, ये जन्म मरण का खास कारण है। तो कम से कम ये हमारे को ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए, तो जानकारी के तीन भेद है, एक हमने सुन लिया, एक हमने सुख सीख लिया, तीसरा भेद है विचार है कि हमने सीख कर पक्का कर लिया बोलते ठीक, परंतु वास्तव में अनुभव करना है, अपने को अनुभव करना है कि सुख के आने पर हमारी वृत्ति कैसी रहती है और दुख के आने पर हम कैसे रहते हैं। सज्जनों ये खास चीज है, अपने आप की निगाह करने के लिए, अपनी परीक्षा करने के लिए, जिससे कि हमारा वास्तविक अनुभव हो जाए, उसके लिए ये सावधान रहना है। संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता तो आवेगी ही, संसार का ये स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता से संसार भरा है, सिवाय अनुकूलता और कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों से ऊंचा उठना है, अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचा उठना है। यंग है ना व्यस्यंती है, ये मात्रा स्पर्श है जिसको व्यथा न पहुंचावे, सुखदायी परिस्थिति में राजी हो गए, ये भी एक व्यथा है, व्यथा है। और अनुकूल राज्य व्यथा, प्रतिकूल ये भी व्यथा, दोनों को व्यथा का दोनों व्यथा है, व्यथा पीड़ा को कहते हैं, तो अनुकूलता भी पीड़ा और प्रतिकूल भी पीड़ा, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते ऐसा समझो को सुख दिए है, वो अमर तत्ता है, अमर लाभ की प्राप्ति का पात्र बन जाए। तो हमें ऐसा बनना है, देखो कहीं हमें जाना हो तो कहाँ जाना है उसकी दो पहचान है, एक तो जानकार बता देंगे हम इस रस्ते से गए हैं, इस रस्ते चले जाओ बद्रीनाथ पहुंच जाओगे, तुम्हें जहां जाना वहां पहुंच जाओगे, और ये बता देंगे वो पहाड़ पर मंदिर है वहां जाना है, तो मन में और दोनों बता दे तो काम बढ़ जाए। फिर से जाना है वहां और ये मार्ग है यहाँ। तो भगवान कहते हैं समता में पहुंचना है भाई, ये पहुंचने का मार्ग है क्या? योग स्थित कुल कर्म, योग में स्थित होकर कर्म करो, सिद्धि सिद्धि भूत हुआ, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, पहले सिद्धि असिद्धि दोनों में सम हो जाओ, ऐसे सम होकर वहां पहुंचो। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना ये खास अपने आवश्यकता है परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। ये भाई बहन पधारे हैं तो आपको और हमें सबको ये चाहिए कि अनुकूल का प्रतिकूल संसार है ही। पढ़ाई हम करते हैं तो 12 महीनों में वार्षिक परीक्षा होती है, हमारी यहाँ परीक्षा रोजाना होती है, रोजाना अनुकूल का प्रतिकूल आती है। उसमें अगर हम सम रह जाए तो पास हो गए और सुखी दुख युद्ध फैल हो गए, तो फैल नहीं होना है। ये खास चीज देखनी, ये हमारे देखी बात कहते हैं हम, हमें सुख दुख और आपकी भी देखी हुई, सब देखी हुई है, आप में हमारे फर्क नहीं है। ये सुख और दुख आते हैं, हम भी पहचानते हैं, आप भी पहचानते हो। ये ज्ञान सबको होता है, ज्ञानी से ज्ञानी को ज्ञान होगा, अज्ञानी से अज्ञानी ज्ञान होगा, मूढ़ से मूढ़ को भी, सांप बिच्छू महान तामसी दुनिया उनको भी होता है, नरकों में भी होता है। जो दुख की जगह है खास पाप भुगता करके निर्मल बनाने का स्थान है वो नरक स्थान है, जैसे यहाँ कारागार होता है। तो वहां भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, बड़ी भारी घोर यातना दी जाए तो तपते हुए तेल में कहार में खोल रहा तेल, धुआं उठ रहा तेल में, ऐसे तेल में डाल देना, ये थोड़ा सा बिंदु लग जाए तेल का तो कैसी दशा होती है तपे हुए तेल को। इस तरह से तेल में डाल दिया तो वो मूर्छित हो जाता है, तेल में पक जाता है। उससे बाहर डालते हैं तो हवा आती है ठंडी, शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो दुख और सुख वहां भी हुआ, महान भयंकर यातना में भी सुख और दुख होता है। इस वास्ते भागवत में कहा सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरके होगा, इंद्रियों से होने वाला सुख तो राजन स्वर्ग में भी होता है और नरक में भी होता है। सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरके होगा, नरक में स्वर्ग में होता है। कैसे होता है भाई? क्योंकि अवश्य होता है, हमारे किए बिना ही आप बिना किया होता है। कैसे? कि प्राणी में हम यथा दुखम, जैसे प्राणियों को दुख होता है तो दुख की कोई चाहना करता है? दुख के लिए चाहना भी कोई नहीं करता, और उसके लिए उद्योग कौन करेगा भाई दुख के लिए? कोई ऐसा देखता आदमी देखने में आया कि भाई हमारे को 2-4 वर्ष हुए बुखार आया ही नहीं, वो कब आएगा? और ज्योतिष से पूछे महाराज बुखार कब आएगा, कोई नहीं पूछता। 5-7 वर्षों में हमारे घर में कोई मरा नहीं, कब मरेगा महाराज, कोई नहीं पूछता। हम चाहते भी नहीं कोई ना मरे। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता को देकर अनुकूलता की चाहना करते हैं, और अनुकूलता आती है कैसे? तो सुखदेव मुनि कहते प्राणी नाम तथा दुखम, जैसे दुख को चाहते नहीं तो दुख के लिए उद्योग प्रयत्न करते नहीं, फिर भी दुख आता है। तो दुख आया ऐसे सुख भी आएगा, क्यों? दुख के बिना चाहे बिना बुलाए बिना प्रयत्न के दुख आता है, ऐसे सुख की चाहना मत करो, उसके लिए उद्योग मत करो, तो भी सुख आएगा। ये खूब समझने की बात है। जैसे दुख बिना बुलाए आता है, ऐसे सुख भी बिना बुलाए आएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रतिकूलता बिना बुलाई आती है, ऐसे अनुकूलता भी आएगी। मनुष्य जीवन में ये 84 लाख का जीवन सब है पुण्य और पापों का फल भोगने के लिए। तो पुण्यों का फल भोगने के लिए सुख आता है और पापों का फल भोग किया जाए उसके लिए दुख आता है। तो किए हुए पाप पुण्यों का फल उससे जन्म होता है, पशु पक्षी मनुष्य सबका। तो मनुष्य के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, सुख और दुख आता है। तो जैसे दुख बिना बुलाए आता है, ऐसे सुख भी बिना बुलाए आता है। ये विशेष ध्यान देने की बात हो, सत्संग करने वाले भाई बहनों को इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। सुख की चाहना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, देवता मनाते हैं, भगवान की मनोती करते हैं, तो बेटी के लिए तो करते ही नहीं उद्योग, फिर भी बीमारी आ जाती है, आ ही जाती है। तो बीमारी आ जाती है बिना बुलाए बिना चाहे अवश्य भावी आ जाती है। ऐसे सुख भी बिना बुलाए बिना चाहे सुख भी आएगा। निरोगता भी आती है, स्वतः आती है, स्वाभाविक आती है, बिना उद्योग बिना परिश्रम किया आती है। हमने विचार किया है और सुना भी है और शिक्षा भी मिली है कि कुपथ्य मत करो। ठीक बात है, कुपथ्य न करना मनुष्य का कर्तव्य। एक बात याद आ गई, उस पर कहता हूं। यहां इसी सत्संग में रहता था, जुकाम हो गया, खांसी होने लग गई, तो यहां माताएं आती थी, उनसे भिक्षा ले लेती, बच्चा को माई देव कौन दे, भिक्षा ले जाते और गंगा किनारे पा लेते। एक सज्जन लया दही ले लू, मैंने कहा भाई खांसी है, हमारे जुकाम हुआ हुआ है, कहते ले बोलो। वो आपका पक्का विचार? हाँ पक्का विचार दे दो। उसे खैर ठीक हो गई, आश्चर्य बात है या बीती हुआ। तो हम क्या जाने, अपनी दृष्टि से कुपथ्य नहीं करना, इसका अर्थ ये नहीं कुपथ्य करना, परंतु कभी कभी कुपथ्य से ठीक हो जाए, बीमारी ठीक होगी। कहते आप लोग पक्का विचार कर, हाँ मैं पक्का विचार कर रहा हूँ, कह रहे हैं भाई। तो अपनी दृष्टि से कुपथ्य नहीं करना, ये शास्त्र की आज्ञा है। परंतु बीमारी मिटनी होती है तो पथ्य से कुपथ्य दोनों से मिट जाती है, और आनी है तो पथ्य सेवन करते करते आ जाती है। तो ये कर्तव्य है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है कर्तव्य कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्तव्य का पालन करो, अकर्तव्य मत करो। ये करो माँ फलेश फल में नहीं, फल क्या होगा, अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा इसका पता नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है। इस वास्ते अनुकूलता प्रतिकूलता को राजी नाराज नहीं होना हमारे हाथ की बात नहीं, उसमें नाराज और क्या करोगे, कोई दुख भाव नहीं, कोई दुख के लिए कोरा दुख निकाल शुद्ध दुख पाना है। दुख पाने के लिए थोड़ा ही मानव जन्म, सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए। इस वास्ते फल अपने हाथ में बात नहीं, फल अनुकूल होता है प्रतिकूल भी होता है। तो उन फल में सिद्ध सिद्ध और समो भूतवा, ये कहा भगवान ने, सिद्धि असिद्धि में सुख दुख में समो हो, समो भूतवा, सम होकर काम करो, और संगम त्यक्त्वा फल फलो संकट त्याग करो। संग करता फलन चाहिए, तो संग आसक्ति का फल का त्याग करो, इनकी इच्छा मत करो, ना सुख की इच्छा ना दुख की इच्छा, तो क्या करें? जो भगवान भेज दे उसका मस्त राजी है तेरी सजा में, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। संतों की बात ऐसी सुनी है मैंने भाई, ऐसी सुनी है कि जो परिस्थिति आया उसमें खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये भगवान का विधान है। अगर भगवान के विधान में राजी न रहोगे तो किस विधान में राजी रहो? ऐसा आपको कौन सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र का परम स्वरूप और कौन मिलेगा? वो एक ही है परमात्मा, वो विधान करता है, उसके विधान से ही सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है। उसमें हम नाराज राजी हम क्यों हो गए? हम राजी भगवान के विधान में, भगवान के विधान में राजी होता है उसके भगवान दास हो जाते हैं। कितनी प्रसन्न हो जाते उसमें, राजी हो जाते। विद्यार्थी पढ़ते थे, एक दिन की बात सुनिए, पढ़ता थे तो रमावतार शर्मा हुए, ऐसे कोई अच्छी तेज बुद्धि वाला विद्यार्थी था, तो वो केहू को उठका देता, केहू को सर देता, ऐसा कर देता, तो उसकी परीक्षा ली गई तो गुरु जी ने बहुत कठिन प्रश्न लिखा, बहुत तेज से जल्दी उत्तर न दे सका, तो वो लिखने लगा तो गुरु जी को प्रेम आता है, अपना शिष्य है ना, कदम तो लिखते आओ जैसा लिखते। उसने महाराज बहुत बढ़िया उत्तर लिखा, तो गुरु खुश हो गए, उनके मन में आया तो घबरावा, बेटा घबराओ नहीं, लिखो, घबराओ मत। कठिन पर्चा दिया तो कठिन का उत्तर देने में कठिनता पड़ती है, तो वो कठिनता भी गुरु जी को दुखदायी हुई। बालक के जो शिशु व्रण हो तो वो सारी बालक की फूरा फूसी हो जाए, तो माँ जा करके डॉक्टर से कहती है कि इसको ठीक करो, तो पहले पीड़ा तो हो रही है, वो छुरा लेता है, बच्चा तो देख भी रोने लगता है, यूं लगा तो चीरा लगाना, बालक के दुख होता तो माँ के सुख थोड़ा ही होता है। माँ तो चीरा व कठिन की नहीं, कठिन की तरह होती है, क्रूर हृदय हो ऐसी माँ हो जाती है, जो पालन करने वाली, जन्म देने वाली, अपना दूध पिलाने वाली, हृदय लगाने वाली, वो माँ भी हृदय कठोर करती है, तो बच्चे की पीड़ा होती है जो माँ के हृदय में बिना छुरी लगाए भी पीड़ा होती है, परंतु माँ सह लेती है। व्याधि नाश हित सही जो शिशु पीर, बालक की पीड़ा को माँ सह लेती दांत भीत करती है, बालक की बीमारी दूर हो जाए, वह स्वस्थ हो जाए। ऐसे नरकों में जितने जीव पड़े हैं, जितने आफत में जीव आते हैं, तो वे दुख भोगते हैं, भगवान राजी थोड़े ही होते हैं, वो तो माताओं की माँ है, और देखते हैं ये पौधन शुद्ध हो जाए, उसे ठीक करने के लिए भगवान प्राण देते हैं, उनको दुख देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए। जो बालक समझता नहीं, हम समझते नहीं, दुखी हो जाते, ये हमारी गलती होती है, तो दुख में हम घबरा में नहीं, हमारे दुख होता है तो भगवान को सुख हो ही होता है, बालक के दुख से माँ भी दुखी होती, भगवान भी दुखी होते, पर भगवान सह लेते हैं। क्यों सह लेते हैं? माँ सह लेती है ना, उसकी बीमारी दूर जा सकती है, ऐसे भगवान से हमें दुख में जाने प्रसन्न होना चाहिए, दुख में जाने क्यों होना चाहिए? कि दुख में पाप कटते हैं और सुख में पुण्य कटते हैं। दुख का फल भोगते हैं तो पाप कटते हैं, दुख का फल भोग लिया दुख क्या होगा। अरे कर्जा हो गया, ब्याज से चुका दिया तो कर्जा मिल जाता है ना। और सुख होता है उसमें शुभ कर्मों का फल होता है, सुखदायी परिस्थिति उसमें राजी होते हैं तो पुण्यों का नाश होता है। तो हमारी उन्नति में दुख कारण होता है। जितने संत हुए हैं उनकी जीवनी आप पढ़ो, जीवन में बड़ा कष्ट सहा, बड़ी प्रतिकूलता सही है, फिर संत महात्मा हो गए, ऊंचे दर्जे गए। और दुख नहीं सहते हैं वो महात्मा नहीं होते। वहां लिखा है कि ये शान होता है ना, शान खुशा, जिस पर आप छुरा लगाते, तलवार लगाते, चक्कू लगाते, उस तरह लगाते, वो ये खेलते हैं सर सर करता है, उसमें जो कसर नहीं रखो सर त्रिंगा झुकती, तो उसमें अगर कोई सूर्य लगती है। गिर भीर गुरु नाम परुषा क्षराभिस्तिरस्कृता यंत नरा महत्व, गुरुजनों की जो वाणी होती है कठोर, पढ़ाते समय देखो इतना करना पड़े, बैठो इतना करना पड़े, इतना करना पड़े। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षर, जिसमें कठोर कठोर अक्षर शब्द कठोर कठोर है, उसे तिरस्कृत होते हो। ये शान चढ़ता है, वे नरा महत्व जानते, वे मनुष्य महत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे तो दृष्टांत दिया, अलभ्यषाणोत्कर्षणान नृपाणाम, शाणोत्कर्षण को जिसने सही सहा है, मृदा तुम मणियो बसंती, वे मणि राजा के मुकुट पर नहीं चलती, खाड़ी में निकलती है तो सार पर गिरते, जैसे उठ के लगा हुआ मैं साफ चमक उठती है तब तो राजा के मुकुट पर चलती है। ऐसे भाई कष्ट पाने से सुख होता है, बहु बने बिना सास नहीं बनती है, विद्यार्थी बने बिना विद्वान नहीं बनता है। न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी को होके सीखे, किसी को है रहे आज्ञा पालन करिए, उनके शासन में रहे तब हुए, ऐसे एक साथ में नहीं होते। विद्यार्थी बनेंगे, विद्वान बन जाए, पंडित बन जाए, कैसे बन जाएगा, तो ये सहना पड़ता है, तो उसके होकर के वो सीखे। इस तरह से बहुत से महात्मा ऐसे सीखे, कई महात्मा ऐसे भी हुए हैं कि सुखपूर्वक परमात्मा प्राप्ति करूंगी। गीता जब सुखे न ब्रह्म संस्कृत तुम सुखो मस्कृति, सुखे सुख से भी हो जाता है, परंतु सात्विक सुख में यत् बकरी विषमे हुआ परिणाम है अमृत रूपम, तो पहले कष्ट सहना पड़ता है, तो कष्ट अपने को मजबूत बना, पुराने जो पापों का नाश करता है, ध्यान नहीं बात है ये। कष्ट आता है, प्रतिकूलता आती है, तो पुराने पापों का तो नाश होता है और नया विकास होता है, नई उन्नति होती है। जैसे एक लड़का, दो लड़के हैं और वे 30-30 वर्ष के हो गए दोनों, एक के तो बाप और दादा विराजमान है और एक के बाप या दादा भी मर गए, कोई नहीं, 8-10 साल की उम्र में घर वाले मर गए, 30 वर्षों के हुए, तो होशियार कौन सा होगा, बाप दादा के दान प्यार में पलने वाला होगा कि माँ बाप रहे ही नहीं, उसमें पला 30 वर्ष का हुआ, तो जो दुख भोग करके हुआ है, बाप दादा नहीं थे, वो जितना होशियार और मजबूत होगा उतना सुख में पला होशियार नहीं होगा। पर पक्की बात विकास होता है तो शरणय से होता है। संतों ने कहा धमक गुरों की चाहिए, गुरु की धमकाई शरण चाहिए, उस शरण से बड़े हो जाओ। तो बड़ा होने के लिए पहले दुख पाना पड़ता है। बड़ा कैसे हो जाएगा? बड़ा बनता है बड़ा, तो बड़ा बनता है तेल में तला जाता है तब बड़ा बनता है। इस वजह से दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख आया तो पापों का नाश करेगा, नया विकास करेगा। कितनी बढ़िया उन्नति पाप है। पहले के पाप डूब जाएंगे, अगर पाप होंगे नहीं सावधानी होगी। भाई ऐसा दुष्कर्म मत करो जिसका फल बड़ा दुखदायी होता है। तो दुख में ऐसे खुश रहना, यही प्रसन्नता के दुख में खुश कैसे रहे। सुख और दुख दोनों आते हैं, दुखदायी में प्रसन्न रहना। ठीक हो रहा है, भगवान कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। छोटे बच्चे को माँ नहलाती है तो वो रोता है। अरे मूर्ख, माँ की गोदी में माँ के हाथों में लेता हुआ रोता है, हंसे का कहा बता। कौन सी ऐसी जगह जिससे प्रसन्न होगा हंसेगा? ये जगह तो प्रसन्न होने की है, परंतु स्नान करते रोता है। वो मैल लगा लिया, लगा लिया खेल कूद में, कोई खास काम धंधे थोड़ी गया, खेती में गया हो, कहीं दुकान में गया हो, किसी मशीन चलाई हो, तो बात ठीक है। खेल कूद में लगा लिया मैं, माँ को सुहाता नहीं, वो कर रही उसी करता है। वो कह रही ये कोई माँ है ये क्यों रगड़ दिए? तो कहना मैं मैल लगाया क्यों बता, बिना मतलब कर लिया। इस तरह से दुख आकर भगवान स्नान कराते हैं। तो स्नान में हम दुख रोने लग जाए तो ये बालकपन है। समझदार में जो होता कि माँ ठीक कर रही है, ठाकुर जी के हाथ में, ठाकुर जी की गोद में, ठाकुर जी की दृष्टि के सामने है। क्या भगवान की दृष्टि से ओझल होकर दुख पाते हो? भगवान की दृष्टि में तो भगवान की कृपा होती है। एक भगवान की कृपा होती है, एक भगवान की दया होती है। कृपा होती है वो प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा कहलाती है, अनुकूल परिस्थिति में दया कहलाती है। दया कोमल होती है, कृपा ज्यादा कठिन होती है, पर फल एक ही होता है। एक कृपा दया पर्यायवाचक शब्द है, होते हुए भी है मुख सामर्थ्य जो कृपा होती है उसमें समर्थ बनाती है। प्रतिकूलता है वो समर्थ बनाती है। इस वास्ते भगवान कृपा माननी चाहिए। तो ये द्वंद है सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्व कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है। इस वास्ते हमें सुख दुख में समान होकर के काम करना चाहिए। सिद्धि सिद्धि समो भूतवा समत्व योग उच्चते, गीता के ये योग है और ध्यान देना, वो योग करते प्राणायाम करते अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पर गीता का योग और तरह का है। गीता में उस योग का भी वर्ण है, ध्यान योग का वर्ण है, सत्रह अध्याय में आठवां में। परंतु असली गीता का योग है समत्वम योग उच्चते, समता। सम का है यह तीर्थस्तर्गो ये साग साम्य स्थित मना, जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन पुरुषों ने यह जीवन अवस्था में ही संसार में विजय कर ली। सुख दुख से अभिभूत नहीं हुए, न प्रशिक्षित प्रेम प्राप्त नई, तो वो संसार पर विजयी हो गया। अगर सुख दायी परिस्थिति में राजी हो गया, दुख दायी में नाराज हो गया, तो उस पर संसार विजयी हो गया, वो हार गया, वो हार गया। अगर दोनों अवस्था में सम रहा तो उसकी विजय होगी। यही तेज देता सर्गा संसार जीत का, ये सब साम्य स्थित माना जिनका मन साम्य अवस्था होगा कैसे जीत गए तो साम्य निर्दोष आ गए समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है और वो सम रहा तो निर्दोष हो गया। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया ते ब्रह्मणि स्थिता परमात्मा में स्थित है। शरद जी ने दृष्टांत दिया था इसलिए की व्याख्या करते हो यहां वो देखो पहाड़ सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ देखता नहीं इधर भी पहाड़ है सूर्य उदय क्या पता लगे उधर पहाड़ है तो पहाड़ की चोटी पर घाम आ गया तो हम यहां बैठे कह देते कि सूर्य उदय हो गया क्या पता कि देखो वो घाम आ गया है वो घाम आया सूर्य के बिना कैसे आ गया तो ऐसे परमात्मा की स्थिति होने का क्या पता लगा कि मन के ऊपर समता आ गई ये काम आ गया एक पहचान बताई इस बार सुख दुखी समय कृत्व भगवान ने कहा इन सम करो नैवम पापम अवाप्स्यसि यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि मान लो का न हंते न लिप्यते समता रखे समत्व योग उसने ये गीता का योग है। सीधी बात किसी अवस्था में हो किसी परिस्थिति में हो गृहस्थ में हो साधु हो बहन हो भाई हो कोई ज्ञान हो जहां रहते हो वहां ही अपने समता में से करो योगी हो गए समत्व योग हो जाते ऐसे योग का अनुष्ठान करो ये बात अब नोट के ऊपर हो गया क्यों भाई कब तक शर्म होता रहेगा हमें पता नहीं भाई हमें याद नहीं रहता हमें पता याद नहीं रहता समय कहां तक याद नहीं है तो अब 9 से 20 मिनट आ गए अब देखो सूचना उठता भाई कोई प्रश्न हो तो इतनी बातों में प्रश्न उठता हो तो उनसे विषय बहुत विषद होगा कोई शंका रह जाए मेरे कहने में भूल रह गई तो आप पूछ लो तो पूछने से उसको साफ कर लें हमारी भूल भी मिट जाए और कोई नई बात पैदा हो जाए पूछने से बहुत पैसा पैदा होती है प्रश्नोत्तर में वादे वादे दायते तत्वबोधा प्रचार करने से तत्वबोध कर सकता है इस बार तो कोई बात पूछ रहे मुझे पूछ लो भाई
कहते हैं निर्दोष और सम ये एक ही अर्थ रखते हैं
दो अर्थ दो अर्थ राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बेटी अनुकूलता प्रतिकूलता इसमें सम रहना निर्दोष में काम क्रोध नहीं है ही नहीं और दोष आ जाते सम रहना राग ही नहीं ठीक है
काम क्रोध जो है यही राग द्वेष है क्या
काम क्रोध स्थूल रूप है राग द्वेष सूक्ष्म रूप है
दोष यही है काम क्रोध
और काम क्रोध ही खास इंद्रिय राग द्वेष रूप व्यवस्थित हो तयोर न प्रसमागत तो यसे परिपंथी न हो प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष रहते हैं तो ये दोनों ही परिपंथी मानो मार्ग में लूटे रहे ये तो ऐसे परिपंथी न हो इस बात में त्रिगोर न भ्रष्मागत थे एक दिन की बात है कलकत्ता में 5-5 7-8 महीना रहते थे तो घूमने वो जाते तो गीता का पाठ करता था मैं तो किले के मैदान में किले के पास में उस सड़क जाती है उस सड़क और पार होने लगा तो ये श्लोक आ गया कि निर्ष इंद्रिय राग द्वेष व्यवस्थित हो तो व्यवस्थित तो आ गए तो भाई इससे तो बड़ा मुश्किल है, तो आते ही अनुकूल आते ही है व्यवस्था से स्थित होते हैं। अब क्या करें, तो फिर त्योहार में बस मांगे थे खुशी आ गई। अरे ये बात बढ़िया बता दी भगवान, भगवान ने कहा तुम उसके वशीभूत मत हो, राग के वशीभूत कर लो चीज का सेवन मत करो और देश के वशीभूत त्याग मत करो, ये वशीभूत है त्योहार न बस मांगर थे क्यों, तो ये से परिपंथी हो तुम्हें शत्रु है तो राग देश मुश्किल भगवान ने बताए मैं इस बात की वशीभूत न हुआ फिर ठीक हो जाए। नारायण 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 भगवान का आदर होने से, भगवान की बातों का आदर होने से, मानो जैसे कोई एक नलिका हो चाहे कांच की बांस भी, वह में जो चीज है उनसे विरुद्ध दर्शनीय डाली जाए तो वो आगे निकल जाएगी, तो संसार का जो नाशवान का महत्व जमा है वो अविनाशी का महत्व स्वीकार करने से मर जाएगा विरोधी का।